SBS हिंदी।
हिंदी भाषा को हम सभी अलग अलग तरीकों से बोलते समझते हैं, कुछ तो इसके देश स्वरूप को ही अपनाते हैं। अमेरिका में हिंदी के क्षेत्र में अद्भुत काम करने वाली डॉक्टर मृदुल कीर्ति ऑस्ट्रेलिया आई हुई हैं। वे न केवल हिंदी की वैज्ञानिकता के प्रमाण दे रही हैं, बल्कि हिंदी को बोलने के दौरान होने वाले स्पंदनों को योग से भी जोड़ती हैं। डॉक्टर मृदुल कीर्ति, SBS हिंदी रेडियो पर आपका स्वागत है।
धन्यवाद जितार्थ जी।
डॉक्टर कीर्ति, क्या ये संभव होता है कि हम हिंदी को पूरी तरह से सीख कर इसके ज्ञाता हो जाए?
ज्ञान का क्षेत्र तो आकाश की तरह विस्तृत है। इसमें हमेशा ही शिक्षार्थी ही रहता है व्यक्ति। कोई नहीं कह सकता कि मैं सब जान गया, लेकिन जो भाषाई आपका पक्ष है और जिस विषय को लेकर हम वार्ता करने जा रहे हैं उस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी।
तो चलिए फिर मैं मंच आपके हवाले कर देता हूँ, माइक भी आपके हवाले कर देता हूँ कि क्या है हिंदी भाषा, क्या है और क्यों इसको जानना इतना अच्छा है, इतना महत्वपूर्ण है भारतीय ऑस्ट्रेलियाई मूल के लोगों के लिए।
देखिए, जब ये ऑस्ट्रेलिया मूल शब्द की बात की आपने, तो हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की, जो हम उपनिषदों का अगर वासुदेव कुटुंबकम का पक्ष लेते हैं, तो सारी दुनिया ही हमारा घर है और जो जो बंटवारे हुए हैं वो भौगोलिक और राजनीतिक हैं। लेकिन जिस ओरिजिन का, जिस मूल संस्कृति का कोई भी व्यक्ति किसी और जगह जाता है तो अपने साथ क्या लेके जाता है? अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने परिवेश, अपने रीति रिवाज। उनमें भाषा मुख्य होती है।
तो मैं पूछना चाहूँगा कि हिंदी क्या है?
हिंदी मूलतः जो है वो देव भाषा है। और देव भाषा इसको क्यों कहते हैं? देव भाषा का जो शीर्षक है वो तो एक बहुत बड़ा दिव्य शीर्षक हो गया। इसको मैं सिद्ध करती हूँ कि हिंदी को देव भाषा क्यों कहा जाता है। इसका जो आध्यात्मिक और दिव्य पक्ष है वो कि हिंदी संस्कृत से ही निकली है, इसलिए ये दिव्य भाषा है और देववाणी है। अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं तो उसके 10वें अध्याय का 33वां मंत्र जो है उसमें वासुदेव स्वयं कहते हैं कि अक्षरानाम अकारो अस्मि। अब मैं आपको अक्षर पर ले जाती हूँ, वर्णमाला पर, हिंदी की वर्णमाला और अक्षर की बात करते हुए इसका आध्यात्मिक पक्ष, वैज्ञानिक पक्ष, इसका यौगिक पक्ष और इसका जो दिव्य और दर्शन, जितनी भी इसमें गुणवत्ता समाहित है और जो इसका फिलॉसफी और दर्शन है उसको मैं उजागर करती हूँ। थोड़ा सा श्रोताओं को कहूँगी कि इसको थोड़ा सा ध्यान से सुने कि वर्णमाला का जो दर्शन है वो बहुत गहरा है और ये केवल मौखिक ही नहीं, आपके आंतरिक संरचना से इतना जुड़ा हुआ है कि आपके देह के किन किन बिंदुओं को स्पंदित करता है मैं उसको अभी बताती हूँ। तो वर्णमाला में आप देखेंगे कि सबसे पहले अकार आता है। हम कुछ भी बोलते हैं तो अकार होता है। स्वर और व्यंजन, इन दोनों को, जो वॉवेल और कॉन्सोनेंट हैं, इनके योग से ही वर्ण बनता है। तो इन दोनों में अकार मुख्य है क्योंकि बिना अकार के किसी भी शब्द की संरचना होती ही नहीं। एक तरह से आप कह सकते हैं अकार प्राण है। अब मान लीजिए आप क बोलते हैं तो आप देखिए, क प्लस अ इज इक्वल टू क, केवल का कुछ भी नहीं है, वो आधे का की तरह प्रयुक्त तो होता है। उसको पूर्णता देने के लिए अकार का उसमें समावेश होता है। तो अकार जो है वो वर्णमाला का प्राण है। बिना अकार के वर्णमाला के पूर्णता हो ही नहीं सकती है। एक तरह से अकार जो है वो वर्ण की विभूति बताई है कृष्ण ने, और वर्ण अकार वर्ण की ध्वनि संचेतन शक्ति जो है वो ही वर्णों में प्राण प्रतिष्ठा करती है। अब मैं आपको बताऊं जो मैंने अभी कहा उसको मैं कैसे बताती हूँ। अब देखिए, जितने भी लोग हैं हिंदी की वर्णमाला की जब बात करते हैं तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप पूरी वर्णमाला सुनाइए, क्योंकि यहाँ वर्णमाला पे बात हो रही है, उसके अलावा मैं इधर उधर की बात ना करके केवल उसी को एम्फसाइज करके और आगे सिद्ध करती हूँ। अब मैं श्रोताओं आपसे ये कहती हूँ कि आप अ बोलो, ये जब आप अपनी नाभि पर हाथ रखिए, जब तक ये नाभि नहीं हिलेगी तब तक आ का उच्चारण शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसका निष्पन्न होने का और उत्पन्न होने का स्थान नाभि है, और नाभि जो है हिरण्यगर्भा है, यहाँ पर मणियाँ छुपी हुई हैं। भाषा के क्षेत्र में जाइए, योग के क्षेत्र में जाइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में जाइए, कुंडलनी के क्षेत्र में जाइए, बच्चे के जन्म होने के क्षेत्र में जाइए, सब कुछ ये नाभि है, इसीलिए इसको हिरण्यमय क्षेत्र कहा जाता है। अब मैं भाषा पर आती हूँ। अब मैं आपको आ से हा तक की यात्रा कराती हूँ, और उस यात्रा में जो भी श्रोता हैं वो कृपया मेरे साथ आ के नाभि के साथ अपने जो जो मैं अंग कहती हूँ उनको छूते जाइएगा। तो आ मैं यात्रा शुरू करती हूँ वर्णमाला में स्वर की
जी,
स्वर आ से आहा तक मैं आती हूँ। उसमें देखिएगा नाभि पर आप जितार्थी हाथ रखिए, और अब मैं धीरे धीरे आप देखिएगा आ नाभि हिली, आप ऊपर चलिए आ आ ई ई उ री, री में थोड़ी सी झनझनाहट है तो हृदय में आई री उ री ए आए ओ औ अंग अहा, अहा में आप कंठ पे आ गए, अहा में जब जो निकला है आपका जो प्राणायाम के उसमें अहा जो निकला वो आप कंठ में आ गए। अब कंठ में जो अब हम आते हैं वर्णमाला में व्यंजन पर क ख, अब आप कंठ पे हाथ रखिएगा जितार्थ जी, कंठ पर हाथ रखिए आप, तो क ख ग घ आ, ये आपका कंठ हिल रहा है तो ये कंठी है। उसके बाद आते हैं हम च वर्ग पर, तो च वर्ग में मूर्धन्य पे आते हैं, मूर्धन्य जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा है वो मूर्धन्य कहते ही उसको है, जो सबसे अंत का हिस्सा होता है। मूर्धन्य विद्वान आपने सुना होगा कि जो उच्च कोटि के होते हैं, तो जीभ का जो अगला पार्ट है वो मूर्धन्य है, उसको च छ ज झ उआ। अब आते हैं टावर्ग पर, तीसरा है टावर्ग, टा में देखिए कितनी सुंदर है हिंदी की, उसके लेखन में भी वही टा, जब देखिए तो टा में आपकी जीभ मुड़ती है, ट्विस्ट होती है, और उसको लिखते भी हैं मोड़ कर टा, तो वो जो टक्कर लगती है वो तालु पर लगती है, पैलेटल, तो ट ठ ड ढ ण। अब ता वर्ग पे आते हैं तो दांत मिलते हैं, तो ता थ द ध न, ये दंती है। उसके बाद लास्ट में नाभि से जो यात्रा शुरू की थी वो होठों तक आ गई, तो पा, जब तक आप ये होठ नहीं मिलाएंगे पा वर्ग को नहीं बोल सकते, प फ ब भ म। इस तरह ये पूरी यात्रा जो है वो यौगिक भी है, क्योंकि इसमें जो हमने श्वास का निश्वास प्रश्वास और कुंभक किया, ये हमारे प्राणायाम का भी स्वरूप एक होता है, और हमारे जो ध्वनि तंत्र हैं वो सब ध्वनित तो होते हैं। इस तरह मैं कह सकती हूँ कि इतनी उच्च कोटि की ये देव भाषा वैज्ञानिक है। ये मैंने आपको छोटा सा परिचय दिया वर्णमाला का, स्वर और व्यंजन का।
और इसको सीखने से, इसको बोलने से स्वास्थ्य और शरीर इनका भी कुछ प्रभाव पड़ता है
जी? संस्कृत का तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि
अगर हम हिंदी भाषा की बात,
मैंने कहा ना ये देववाणी है, तो संस्कृत में तो होता ही है, लेकिन ये देववाणी है, इसमें भी अभी मैंने आपको पूरी यात्रा दिखाई, तो सारे अंग नाभि से होठ तक सब यात्रा ही तो है ये हमारे शरीर के अंगों की, तो वो जो जंग जब तक वहाँ स्पंदित नहीं होते तो शुद्ध उच्चारण ही नहीं होता है।
इसके अलावा हिंदी और हिंदी भाषा को सीखने का इससे अलग कोई महत्व हो सकता है कि वो ना केवल आपको ज्ञान दे रही है बल्कि आपके शरीर को भी शायद बेहतर स्थिति में रखने में आपकी मदद कर रही है?
वो पक्ष भी है उसका, इसलिए मैंने कहा कि इसका जो यौगिक पक्ष है वो भी बहुत सवल है।
यानी कि हिंदी अगर हम बोल रहे होते हैं तो योग कर रहे होते,
योग कर रहे होते हैं, वो अंदर के श्वास और प्रश्वास का योग है, ये एक वैज्ञानिक सत्य है। और इसकी वैज्ञानिकता पे अगर हम जाएं तो आपको एक पक्ष और बताती हूँ जितार जी, कि इसका वैज्ञानिक पक्ष देखिए, अभी हमने आ से हा तक की यात्रा बताई, तो इंग्लिश में ए है और एच है, तो देखिए हम जब का लिखते हैं तो के ए का, और खा लिखेंगे तो के एच ए खा, तो एक बार एक सिरा पकड़ते हैं, एक बार दूसरा सिरा पकड़ते हैं। तो एक हमारे यहाँ हिंदी में जो इसके उस आंतरिक गहराई में जाओ तो का कोमल है, ख कठोर है, ग कोमल है, जी है, ख कठोर है, के एच ए, च सी एच ए, छ सी एच एच ए, ये कठोर है। तो एक कोमल एक कठोर का संयोजन भी है इसमें। और एक बात और है हिंदी में कि हिंदी का एक बीज शब्द होता है कोई, उसका प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर यानी विराट शब्द संरचना संभव होती है आकाश की तरह। और हर शब्द जो है वो अपने आप में पूर्णता लिए हुए होता है हिंदी। जैसे मान लीजिए हम रोज ही जैसे हम जगत बोलते हैं, कहते हैं ना जगत है ये, जग है ये, तो क्यों कहते हैं हम इसको जग? जा कहते हैं जन्मते और गा कहते हैं गम्यते। ये वो स्टेशन है जहाँ जन्म होगा और गमन भी होगा, तो जग वो है, जन्मते गम्यते इति जगस्ता।
ऐसा लगता है कि हिंदी को एक बार दोबारा जान लिया मैंने, कि शायद हिंदी बोलते हुए आपने मुझसे कहा भी कि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है, ठीक नहीं मैंने शब्द को बोला, मगर उसके बावजूद ऐसा लगता है कि अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो योग भी कर रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
धन्यवाद जितार्थ जी।
sbs.com.au/hindi पर जाए और ऐसे अंश का आपकी भाषा में आनंद उठाएं।